नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग आज लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में नगर कुरनूल में जनसभा को संबोधित किया। भारत ने धार्मिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र को विभाजित करने की कोशिश के प्रति आगाह करते हुए हर प्रकार के धार्मिक भय की निंदा की। केंद्र ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासिन मलिक गुट पर प्रतिबंध बढ़ाया। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन आज इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से खेलेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं अलका सिंह। निर्वाचन आयोग अब से कुछ देर बाद लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगा। आयोग कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तिथियां भी घोषित कर सकता है। इस घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाएगी। एक रिपोर्ट।
मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। वर्ष 2019 की ही तरह इस वर्ष भी अप्रैल और मई के महीनों में लोकसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। पिछले लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने 543 में से 303 सीटें जीती थीं। इस बार भाजपा को 370 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद है। पार्टी ने अब तक 267 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। विपक्षी कांग्रेस ने लोकसभा के लिए 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। वामदल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य दलों ने भी कई लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सकलैंड अख्तर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में तेलंगाना के किसी भी भ्रष्ट नेता को बख्शा नहीं जाएगा। आज तेलंगाना में नगर कुरनूल में एक विशाल जनसमूह से उन्होंने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि परिवारवादी दलों में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का एक साझा इतिहास होता है।
कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा तो ये होकर रहता है। जब मोदी कहता है कि राम लला अपने घर आएंगे तो ये होकर रहता है। जब मोदी कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गत 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास एनडीए की प्राथमिकता रही है। श्री मोदी ने कहा कि तेलंगाना को गेट वे ऑफ साउथ कहा जाता है।
जब मोदी कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाता है। हमने तेलंगाना के गरीबों के लिए 1 करोड़ बैंक अकाउंट खोले हैं। ये मैं पूरे देश की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं हमारे तेलंगाना की बात बता रहा हूं।
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को राज्य में दहाई अंक की जीत दिलाने में सहयोग की अपील की, ताकि वे जनता से जुड़े मुद्दों का तुरंत समाधान कर सकें। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। सुश्री पौडवाल ने आज नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक वीडियो गीत मैं मोदी का परिवार हूं जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसका वीडियो साझा किया, जिसमें दिखाया गया है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों से लेकर गरीब परिवारों तक को मिला है। श्री मोदी ने तेलंगाना में एक चुनावी रैली के दौरान मैं मोदी का परिवार हूं नारा दिया था। ये गीत इसी विषय को केंद्र में रखकर रचा गया है।
लोक निर्णय 2024
आम चुनाव पर विशेष कार्यक्रम
जल्द आ रहा है आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर।
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण।
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक घरों के पंजीकरण पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश के सभी हिस्सों से पंजीकरण हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक घरों के पंजीकरण किए गए हैं। श्री मोदी ने लोगों से इस योजना के अंतर्गत यथाशीघ्र पंजीकरण कराने का आग्रह किया। पंजीकरण के लिए वेबसाइट का पता है pmsuryaghar.gov.in। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर उनसे विकसित भारत को कार्य रूप देने के लिए राय मांगी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के दौरान देश ने ऊंची छलांगें लगाई और जबरदस्त आर्थिक प्रगति देखी है। श्री मोदी ने कहा कि देश परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है और भारत की समृद्ध राष्ट्रीय और सांस्कृतिक धरोहर पर बल दिया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने धार्मिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र को विभाजित करने की कोशिश के प्रति आगाह करते हुए हर प्रकार के धार्मिक भय की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कम्बोज ने महासभा के 78वें सत्र में इस्लामोफोबिया से निपटने के उपायों पर एक प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रस्ताव को ऐसा उदाहरण नहीं बनना चाहिए जिससे अलग अलग धर्मों से जुड़े भय को लेकर प्रस्ताव पारित करने की नौबत आए। सुश्री कम्बोज ने कहा कि भारत अनेकता को समाहित करने वाला देश है जहां सभी धर्मों और विचारधाराओं को समान रूप से संरक्षण प्रदान करने के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन किया जाता है।
While the issue of Islamophobia is undoubtedly significant, we must acknowledge that other religions are also facing discrimination and violence. We are in principle opposed to the creation of the post of a special envoy on the basis of a special religion. We trust that the resolution adopted does not establish a precedent that could result in numerous resolutions centered on phobias tied to specific religions, potentially dividing the United Nations into religious camps.
इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गजा के दक्षिणी शहर रफा में हमले की मंजूरी दे दी है। रफा में कई विस्थापित लोग रह रहे हैं। श्री नेतन्याहू ने यह फैसला हमास द्वारा गजा में संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थों और अमरीका को दिए गए प्रस्ताव के बाद आया है। हमास ने फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले इजरायली बंधकों को रिहा करने का प्रस्ताव दिया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इस महीने की 23 तारीख से सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे तीनों देशों के साथ आपसी संबंध बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस वर्ष अक्टूबर में बृहस्पति के चांद यूरोपा पर मैसेज इन अ बॉटल भेजेगी। इस अभियान को यूरोपा क्लीपर मिशन का नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बृहस्पति की बर्फीली सतह के नीचे नमकीन झील है और इस अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक वहां जीवन की संभावना तलाशेंगे। यूरोपा क्लीपर विमान एक त्रिकोणीय धातु का प्लेट लेकर जाएगा। इस प्लेट के बाहरी हिस्से पर हिंदी सहित 103 भाषाओं में पानी शब्द से उच्चरित ध्वनि तरंग को दर्शाया जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में कल 22वें स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति दिवस पर नेपाल के 76 जिलों के लगभग 200 विद्यार्थियों ने भागीदारी की। इस अवसर पर नेपाल के प्रमुख विश्वविद्यालयों, स्कूलों और प्रशासन के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से अमान्य किए गए कैडिटों के पुनर्स्थापन को स्वीकृति दे दी है। प्रभावित कैडिटों के माता पिता कई दशक से पुनर्स्थापन सुविधा की मांग कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रतिवर्ष सैन्य अकादमियों में युवा कैडिटों को शैक्षिक और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में उनकी नियुक्ति करना होता है। नियमों के अनुसार ऐसे कैडिट को कमीशन प्राप्त करने के बाद ही अधिकारी माना जाता है, लेकिन सैन्य प्रशिक्षण के दौरान कुछ कैडिट को चिकित्सा आधार पर अमान्य कर दिया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को अगले 5 वर्ष के लिए अवैध संगठन घोषित किया है। ये संगठन आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देकर भारत की अखंडता के लिए खतरा बना हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मोहम्मद यासीन मलिक गुट पर प्रतिबंध 5 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये गुट जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों के साथ कानून सख्ती से निपटेगा। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं। श्री सहगल भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। वे प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया था। श्री सहगल ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की पहुंच सुदूर क्षेत्रों तक है और ये सूचना के भरोसेमंद स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों तक निष्पक्ष खबर पहुंचाना प्रसार भारती का कर्तव्य है।
आम जन तक सही खबरें पहुंचाना ये प्रसार भारती का एक मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है उसके बारे में भी हमारे जो नागरिक हैं उनको समय समय पर अवगत कराते रहना, और दूरदर्शन और रेडियो की एक बहुत बड़ी रीच है, पहुंच का सही समय पर खबरें पहुंचाने में उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा और एक प्रोफेशनलिज्म लाने का प्रयास किया जाएगा। एज ए पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का ये कर्तव्य है कि वो सही और निष्पक्ष खबरें आम जन तक पहुंचाए।
आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन की अनदेखी के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका के विरुद्ध दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने उन्हें आज जमानत दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 की अवमानना की थी। ये धारा व्यक्ति या एजेंट द्वारा कानूनी आदेश की अवहेलना से संबंधित है। लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज 9वीं वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी से खेलेंगे। 18वीं विश्व रैंकिंग प्राप्त लक्ष्य सेन ने कल रात बर्मिंघम में खेले गए क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ली झीचिया को हराया। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई वाली प्रशासनिक परिषद ने वर्ष 2005 की जम्मू कश्मीर आरक्षण नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। समाज कल्याण विभाग ने यह प्रस्ताव जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024, जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2024 और जम्मू कश्मीर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में दिया था। प्रशासनिक परिषद ने प्रदेश की 4 नई जनजातियों पहाड़ी, पड्डारी, कोली और गड्डा ब्राह्मण को 10% आरक्षण को भी स्वीकृति दी है। इस प्रकार प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल आरक्षण बढ़कर 20% हो गया है। परिषद ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 15 जातियों को जोड़ने को भी अनुमोदित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग आज लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में नगर कुरनूल में जनसभा को संबोधित किया। भारत ने धार्मिक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र को विभाजित करने की कोशिश के प्रति आगाह करते हुए हर प्रकार के धार्मिक भय की निंदा की है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासीन मलिक गुट पर प्रतिबंध बढ़ाया। और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन आज इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।